कोई एक भी ऐसी इस्लाम की बात है जो हमें शर्मिंदा करे। खूबसूरत बात ही है ना। अब इसको ऑपोजिट, बिल्कुल ही ऑपोजिट लोग के अल्लज़ीन यबखलून व यामुरून अन्नास बिल बुखली, जो लोग खुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल का मशवरा देते हैं। व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और वो छुपाते हैं इसको जो अल्लाह ने इनको अपने फजल में से दिया है। वअतना लिलकाफिरीन अज़ाबं मुहीना, और ऐसे नाशुक्रों के लिए हमने बड़ा एहानत अमेज अजाब तैयार कर रखा है। ये कौन लोग हैं? वल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम रियान नास, ये वो लोग हैं यानी जो अल्लाह को नापसंद लोगों की लिस्ट में आते हैं, जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। वला यूमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और हकीकत यह है कि वो ना खुद अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना आखरत पर ईमान लाते हैं। जो ऐसा फजूल खर्च और शो परस्त हो जाए तो वमई यकुनिश शैतान लहू करीनन फसा करीना, ऐसे लोग गोया के शैतान के साथी हैं, और जिसका साथी शैतान हो जाए वो तो बहुत बुरा साथी है। और आखिरी आयत इस मौजू की, वमाजा अलैहिम, इन लोगों पर क्या आफत आ जाती। अब ये हसरत का अंदाज है, इनका क्या बिगड़ जाता। लो आमनू बिल्ला, अगर ये ईमान ले आते अल्लाह पर, वही आमनू याद कीजिए, बाबुदुल्लाह, ईमान को अपने रिवाइज कर लेते, और वल यौमिल आखिर, आखिरी बातें, रियाकार को आखरत पर ईमान नहीं होता। क्या पता चला कि ये अल्लाह और यौम आखरत पर सच्चे दिल से ईमान ले आते। वानफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और खर्च करते खुले दिल के साथ इसमें से जो इनको अल्लाह ने दिया। वकानल्लाहु बिहिम अलीमा, तो अल्लाह ताला इनसे अच्छी तरह वाकिफ है, अल्लाह को पता है कि हमने क्या किया है। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को दिल करता क्यों नहीं, ये भी एक साइकिक होती है कि जिजाया हो जाएगा। तो आयत 40 में अल्लाह ताला कहते हैं, इन अल्लाह ला यस्लिमु मिस्काल ज़र्रा, यकीनन अल्लाह किसी पर जर्रे के वजन के बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। वहीं तक हसनतन, अगर उसके नामे अमाल में एक नेकी होगी, हसनतन वाहिद है सिंगुलर, युदाइफुहा लहा, युदाइफुहा दुगना कर देगा उसको, मल्टीप्लाई करेगा, प्लस नहीं, अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करेगा उसके लिए। और बस इतना ही नहीं, वायुति मिल्लदुन हुआ अजरन अजीमा, और अपने खास फजल से यानी अपने फजल के खजाने में से मजीद बहुत बड़ा अजर देगा। अब ये जो आखिरी हिस्सा हमने एक ऑपोजिट किरदार का देखा है, जरा सा इसको डिस्कस कर लीजिए। शुरू में एक खूबसूरत किरदार समझ आया ना, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, पहले अल्लाह के हक, फिर वालदैन के हक, फिर रिश्तेदारों के हक, फिर मिस्कीनों के, यतीमों के, और फिर उसके बाद गुलामों और लौंडियों के, और उस पर अपनी जिंदगी को गुजारता है। ये जो आयत 37 से किरदार शुरू हुआ है ना, कि अल्लज़ीना यबखलून, असल में ये जो पिछली आयत यानी आयत 36 के आखिरी दो लफ्ज है ना, मुख्तालन फखूरा की तफसीर है। मुख्तालन फखूरा निल्लज़ीना यबखलून, समझ आ रही बात। जब बंदा खुद पसंद शेखी खोरा दूसरों को दिखावे वाला बनता है, तो होता क्या है कि ना खुद खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में ना दूसरे को। तो पहली चीज देखिए, शेखी खोरी है, बुखल, अकड़, बखील। इनका क्या ख्याल होता है कि अगर जो पैसे हमारे पास है, जो दौलत है, अगर ये खर्च हो गई तो हमारा सोसाइटी में मुकाम नहीं रहेगा। जो इज्जत हमें माल की वजह से मिली है वो इज्जत चली जाएगी। तो अपने माल को बचा बचा के रखते हैं, कंजूसी जिसको आप कहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कंजूसी का। अब इस पर ये होता है कि अच्छा कंजूसी की तो लोग कह के बड़े बखील हैं, तो फिर खुद ऐसे लोगों से मशवरे लेते हैं जो इनको खर्च करने से रोकें। बस आप देखिए ना कि एक चीज खुद अल्लाह के रास्ते में देता है तो दूसरे को क्या कहेगा, तुम भी दो। जो खुद नहीं दे रहा, आप उसे जाके कहते हैं, क्या ख्याल है मैं जरा 1,000 रुपया दे दूं, कहेंगे छोड़ो पड़े, तुम्हें नहीं पता बच्चों के फीसें देनी है, और अभी शादियां भी आ रही हैं, और फिर आगे से पाकिस्तान भी जाना है, और उम्रे पे भी तो जाना है ना। यानी ऐसे लोग ना नेकी करते हैं ना करना चाहते हैं। अच्छा दिया तो अल्लाह ने बहुत है, तो यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाह मिन फ़ज़्लिही, हमेशा ऐसी हालत बना के रखेंगे, है ही कुछ नहीं, पूरी नहीं पड़ती, छुपा छुपा के रखते हैं। खतरा क्या होता है कि दूसरे ना मांग लें। बस लोगों का तो पेट जुमला होता है, हाथ बड़ा तंग है, कैसे, यानी अमीर कबीर है, सेठ है अपने खानदान के, बट ये कि गरीब रिश्तेदार मांग ना ले, नहीं वो पैसा है तो बड़ा जी बस लगा हुआ है कारोबार में, हाथ में कैश कुछ नहीं, यानी हम लिक्विडेट नहीं कर सकते। बस लोगों की ये बातें हैं। अब जब ऐसी बातें होती है ना, बुखल है, 37 और आगे की, इन पर एक वाक्या है शाने नजूल में, वो सुन लीजिए। इब्ने अभी हाती में सईद बिन जुबेर से कहते कि उलमा यहूद अपने इल्म में बुखल करते थे, यानी इल्म का भी बुखल होता है, वो बात छुपा लें जिस पे आप खुद नहीं अमल करते ताकि लोग आप पे तनकीद ना करें, ये है इल्म का बुखल। तो कहते इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी कि जो लोग बुखल करते हैं, इसी तरह इब्ने अब्बास की रिवायत इब्ने जरीर में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कहते हैं कि ये लोग कुछ अंसारी सहाबा को नसीहत करने के लिए आया करते थे और इनसे कहते थे अपने माल रसूल के कहने पे खर्च मत करो क्योंकि हमें तुम पर फाके और तुम्हारे मालों के खत्म हो जाने का डर है, और सदका खैरात में जल्दी भी मत करो, कल की क्या खबर, इस पर आयत उतरी। क्या आपको कुछ किरदार ऐसे सोसाइटी में नहीं दिखते, वो दूसरों को भी डिस्करेज करते, डिस्करेजिंग एटीट्यूड, ताकि यही हर वक्त खर्च करते रहेंगे तो हम नजरों में आएंगे। देखिए ना, अल्लाह के नबी की महफिल होती थी, दीन की जरूरतें होती हैं, किसको नहीं होती, आप मुझे बताएं, एक दिन का खाना पकता है घर में, एक महीने का बिजली का बिल बगैर पे क्या आता है, तो दीन की भी होती हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और आप कोई ऐसी बात का तذکرہ करते थे तो कुछ साहिबे फितरत या सलीमुल फितरत लोगों के दिल में उठता था कि हम इस काम में अपना हिस्सा डालेंगे। तो जो दूसरे जिनकी यहां बात हो रही है, असल में नाम लेके भी बात हो गई है तफसीर में, तो वो क्या कहते थे, ओहो अब फिर अबू बकर आ जाएंगे आगे, फिर अब्दुलरहमान बिन औफ, ये उस्मान को पता नहीं क्या हर वक्त ही आगे आगे बढ़ते हैं। अब उनको शर्म क्या आती थी कि लोगों को पता था कि पैसे वाले तो हम भी हैं, तो फिर वो कोई ऐसी बात करते थे कि जो देना चाह रहे हैं ना वो दब के बैठ जाए, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे ना ना दो, फिर शक डालना। दीन वाले इनका क्या पता ये कहां ले जाते हैं, भी कहां ले जाते हैं, दुनिया का कौन सा बैंक है जो नजर नहीं आता, आंखों से सबको दिख रही होती है चीज। लेकिन बहुत सफा आप देखिए, ये आज हमारी उम्मत का भी मसला है, शादियों पे कितना खर्च करते हैं, पिछले साल के फिगर अगर आपको सुना दूं ना, वल्ला ही अब तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है खानों पर, एक खाने पर लगाया हुआ है, आपको तो वन डिश है चल रही पंजाब में खासतौर पर, लेकिन वो वन डिश पता मैंने कैसी देखी लास्ट टाइम, पुलाव है ना, पुलाव गोश्त का पकाते हैं फिर उसके अंदर मछली के पीस सजा देते हैं, सालन है ना मिसाल है अगर कौरमा है तो उसके अंदर कहीं अंडे डाल रहे हैं, कहीं कुछ सलाद में दासी, कि हमने की तो वन डिश है ना, और ये वन डिश वो है जो शादी हॉलों में उससे एक दिन पहले का खाना, 10-10, 20-20 डिशें मैंने खुद देखी हैं, क्या कि कल वहां तो नहीं खिला सकते तो आज यहां खिलाएं। यकीन करें 10-10 लाख रुपए का एक वक्त के खाने का बिल एक शादियों का गया, और इससे भी ज्यादा, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये हालात है दुनिया में। अपने नाम पे शादी का दुल्हन का जोड़ा 5 लाख 6 लाख, और जेवर गोल्ड का अगर कोई ले तो अब तो वो करोड़ों में बातें चली गई हैं, उधर तो इतनी शान है और दीन पे इतनी सी बात 10 दफा पूछेंगे, ये क्या जी, इसकी क्या जरूरत है, तो उसकी क्या जरूरत है, अपनी जात पे नहीं लगाते, दीन की जगह से कोई चीज लेनी पड़ जाए जान पे पड़ जाती, यहां से लिया किसको दिखाएंगे कहां से लिया, डिस्करेजिंग करते हैं। वही चीज मॉल में मिलेगी तो वो 1000 की लेंगे, अपने स्कूल में मिलेगी तो कहेंगे 100 से ऊंची तो होनी नहीं चाहिए। ये चीज मैंने खुद भी फील की है कि एक माइंड सेट होता है। अब आप देखिए कि जब भी कोई ऐसा वक्त आए, जब भी कोई ऐसी चीज हो तो इंसान क्या सोचे, वो ही याद रख ले हारून रशीद का वाक्या, सुनी भी ये बात, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक आदमी मिट्टी के खिलौने बेच रहा, कहा कि क्या है भाई कितने के, कहने लगा दीन का कोई काम है उसकी जरूरत है, लोगों से कोई नहीं मांगा, मेहनत करके खिलौने बनाए हैं तो बेच रहा हूं, कहा कितने के, कहने लगे 1000 अशरफियां दिरहम, कहने लगे हाँ 1000 की इतनी छोटी सी मिट्टी, चले गए आगे। सोए तो ख्वाब में अल्लाह ने एक महल दिखाया और उस महल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कसरे जुबैदा, जुबैदा उनकी बीवी थी। उठ के कहते हैं बीवी को सुबह के, तूने कोई नेकी की है, कहा क्यों क्या हुआ, कहा मैंने ख्वाब में तेरा महल देखा, क्या किए कल, कहती कुछ नहीं बस कल मैं आ रही थी तो रास्ते में देखा एक आदमी मिट्टी के खिलौने बेच रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, कहने लगा कोई दीन की जरूरत है तो मैंने लोगों से नहीं मांगा, मैंने मेहनत कर ली तो मेरी चीज है मैं बेच रहा हूँ, कितने की, कहती 1000 दिरहम या शर्फियां, कहती मैंने उसको पकड़ाई 1000 दिरहम तो मैंने ले ली, कहा अच्छा तुमने वो खरीद लिया टोकरा, कहा टोकरा ले लिया, तो कहते हैं कि किया क्या तुमने उन खिलौनों का, कहा क्या करना था आगे जाके फेंक दी, मेरा मकसद कोई खिलौने खरीदना थोड़ी था, मैं तो वो काम को सपोर्ट करना चाह रही थी, कहा अच्छा जेब में 1000 अशरफियां डाली वापस गए उसी जगह पे, अब वो आदमी तो वहां बैठा हुआ, कहा किधर है भाई वो खिलौने देने आया हूं, तो उस आदमी ने कहा कि आज खिलौने नहीं है जरूरत कल थी, यानी यू मैं नूना बिल गई, फर्क क्या, ये अजर देख कर 1000 अशरफियां देने आए हैं तो वो उनकी बीवी ने बगैर अजर के ले ली, बात समझ गए, ये है बुखल और दूसरी चीजों में दिल तंग नहीं होना चाहिए। और मैंने इतना खुला लोगों का दिल देखा है वल्लाही कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि इतना खुला दिल है, इसके बाद तो अल्लाह कितनी ही खामियों को पीछे डाल देगा कि माशाल्लाह। ये मत सोचे कि दुनिया में सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन एक ओवरऑल टूटी कुर्सी मस्जिद में छोड़ो, ये कारपेट खराब हो गया जो मदरसे में डालो, ये पर्दे फट गए जाके उधर डालो। क्या आज हमारा एटीट्यूड दीन के साथ फकीरों वाला नहीं हो गया? वह किसी को अच्छी जगह पे बैठा देख के कहते हैं ये यहूदियों के झंडा है, ये इनको सऊदी अरब देता है, ये फलान देता है, ये करता है। जब ये हमारा स्कूल बना था लोगों ने कितनी बातें की थी, कहाँ से आ गया? हम तो 20 सालों में अभी तक मस्जिदों के कर्जे नहीं अदा कर सके, ये बगैर कर्जे की इदारा कैसे बन गया? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के काम है, क्यों मांगो? लोगों को खुद अकल होती है, जिनके पास माल होते हैं वो खुद आके पूछते हैं, क्योंकि उनको अपनी माल का मसरफ दिखता है। तो हमेशा याद रखिए कि अच्छी नहीं कर सकते तो बुरी ना कहें, एक डिस्करेजिंग जुमला को बोल दे, पता नहीं कहाँ से आता है, बस जो दे रहे हैं उनको भी शक पड़ जाएगा, पता नहीं किधर से आता है क्या होता है। तो याद रखिए इन चीजों में वाजवा गैर जिम्मेदारी के जुमले भी नुकसानदेह होते हैं। तो बहरहाल इशू बहुत ही ये क्रिटिकल है, लेकिन हमेशा अपने दिल को इस बात का यकीन दिलाएं कि अल्लाह को मेरे दिल का पता है। और यहां आपने एक चीज नोट किया कि यब खुलून खुद बुखल करते हैं, फिर यामुरून अन्नास, और अमर का सीगा किसके लिए होता है? हुक्म, यानी दूसरों को हुक्मिया तौर पे कहते हैं तुम भी बखील बन जाओ। और यहां एक तीसरी चीज भी नोट करें कि यहां बुखल का कंपैरिजन रियाकारी है, दिखावा, शो ऑफ। एक तरफ बात मशहूर हो चुकी है, आपके 10,000 से नीचे कोई जोड़ा नहीं पाकिस्तान में पहनता, बात मशहूर है कि नहीं है? ये किस नाम पे है? रियाकारी है। शादियों पे सर्दी लग गई, ठंड लग गई, क्या हुआ? कपड़े बड़े पतले थे, बाजू नहीं थे, गला खुला था, तो गला तो खराब होना था, लेकिन वहां रिया और दिखावे के नाम पर इतना खर्च कर दो। लेकिन किसी भी मामले में आप देखिए तो ये चीज नापसंदीदा है। अबू दाऊद की रिवायत है अब्दुल्ला बिन अमर से, रसूलुल्लाह ने खुतबा पढ़ा और फरमाया तुम बखीली से बचो, तुम्हारे पहले लोग इसी बुखल की वजह से तबाह हो गए, हिर्स ने इनको बखील कर दिया, और नाता तोड़ने को कहा तो उन्होंने नाता तोड़ दिया, यानी रिश्तेदारियां तोड़ दी, और फिस्को फजूर का हुक्म किया तो उन्होंने फिस्को फजूर किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपके मेरे लिए ये बातों को समझना आसान कर दे। इब्ने कसीर में रिवायत है जब अल्लाह अपने बंदे को कोई नेमत देता है तो चाहता है कि इसके असर दिखे, यानी नेमत मिलने के बाद जाहिर करो कैसे खुद भी खाओ पियो दूसरों को भी खिलाओ। यानी ये हमारे दीन का मिजाज है कि बुखल में रहकर कंजूसी में इतने भी ना बढ़ो कि सर्दी आ गई तो बच्चे को पतले कपड़े पहना रहे हो ताकि लोग कहें कि इसके पास है ही नहीं, तो लोग उस बच्चे को फिर भीख देने लगे। आज हमारे चौकों पर यही होता है, फकीर है, घर में सब कुछ है, तो गरीब बच्चे बनाकर वो रोड्स पे लेके आ जाते हैं, तो ये सारा कुछ गलत है। आखिरी हदीस सिलसिला सहीहा की है ये, नबी सल्लम ने फरमाया कि दो खसलतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती, बखीली और बुरा अखलाक। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको बुखल और बुरे अखलाक से बचाए, क्योंकि इसके बाद नेकियों के जज्बे दम तोड़ने लगते हैं, और जो अल्लाह ने अपना फजल किया, रहमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ वेस्ट में तो कोई भी फकीर नहीं है, अल्लाह के हुक्म से फीलिंग तो यही आती है। नॉर्वे में लगता है कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है, हर चीज़ जुड़ी हुई है, सही है, सड़कें इनकी ठीक हैं, बसें इनकी खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। खास तौर पे हमारे अपने मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए इन आयतों में बहुत बड़ी वईद है, और यकीन करें यही आज हमारे मुल्क का मसला भी है, क्लास सिस्टम बन चुका है, अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर, फिर उसी से सारी नफरतें हैं और आपस में, और जो चोरियां चिकारियां इसी वजह से, और इसमें जो आखिर में खास तौर पर रियाकारी की बात है, इसके लिए तो बहुत दुआ करें कि अल्लाह हमें दिखावे से बचा, इल्म का दिखावा, इबादत का दिखावा, क्योंकि वो हदीस आप हर किताब में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सून आपकी किताबों में से एक किताब शुरू हम करेंगे जिसमें आप ये हदीस पढ़ेंगे कि क्यामत के दिन तीन लोगों से जहन्नुम का ईंधन जलाया जाएगा, जिसमें एक शहीद होगा, एक कारी होगा और एक सखी होगा। वजह क्या थी कि दिया तो सब कुछ किया नेकी का काम, लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। वहां आप हदीस पूरी खुद पढ़ेंगे, तो नेकी का काम करते हुए खुद को जरूर टटोला करें कि कहीं मेरी नीयत दूसरों को दिखाने की या जतलाने की तो नहीं है, क्योंकि जब रियाकारी आती है तो शैतान की दोस्ती पक्की, और शैतान तो हमेशा बुरी चीजों का ही फैसला करवाता है। एक तरफ ईमान का अखलाक था जो हमने पिछली आयत में पढ़ा, आयत 36 में, मुझे लगता है उसके मुकाबले में ये जो अब आखिरी किरदार है ये कुफर का रिप्रेजेंटेटिव है। जहां अल्लाह पर ईमान नहीं होगा वहां ये सारी चीजें इंसान के सामने आएंगी, और आप तकाबुल करके देख लीजिए तो पसंदीदा किरदार कौन है, लोग किसको पसंद करते हैं? जो अल्लाह के पहले हुक्मों पे अमल करे, और जिसके अंदर ये बाद वाली चीज़ें होंगी तो वो तो दूसरी तरफ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बुखल से और सारी चीज़ों से बचाए। पीछे भी आपने पढ़ा है बुखल सूरत आल इमरान आयत 80 में, कि जिसमें ख़ास तौर पे बुखल की बात हुई थी। नंबर नोट कर लें, जाके आयत में खुद भी लिख सकते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून वली आयत, कि मत सोचें वो लोग जो बुखल करते हैं अल्लाह के दिए हुए को छुपाते हैं, कि ये उनके हक में बेहतर है। क़यामत के दिन तौक बनाकर इनके गलों में पहनाया जाएगा। इसी तरह सूरत अल-लैल में आयत 8 में आता है, गालिबन 8 से 10 तक है, वम मम बखिल वस्तगना वकज्जब बिल हुस्ना, जिसने बुखल किया और गनी बना रहा और हुस्ना यानी अच्छे मामले को झुटला दिया, तो हम उसको मुश्किल रास्ते के लिए आसान कर देंगे। यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है, और कोई सवाल कोई बात आपके आई है तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा मौजू अब चेंज होगा।
जो सास ससुर की खिदमत है वो हम पे फर्ज नहीं है। और मुझे कुछ दिन पहले सुनने को ये भी मिला कि एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा था कि तुम्हारी शादी हो रही है तो अपनी बीवी को बिल्कुल ये ना कहना कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो ना, तो ये उनका फर्ज नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि बेटियां तो शादी होकर अपने घर चली जाती हैं और पीछे तो ज़ाहिर बहू ही होती हैं जो बूढ़े वालदैन के साथ होती हैं, तो इसमें किस तरह से उन बच्चों और बच्चियों को समझाना चाहिए कि सास ससुर की खिदमत फर्ज है नहीं है, या उसको किस तरह से उनको
देखिए, सवाल आपने इनका सुन लिया, इसी आयत में इसका जवाब था, वल जारी विल जुनब, फिर जिल कुरबा, फिर अलग। तीन किस्म के हमसाए पड़े हैं ना, अजनबी, फिर मुसलमान हमसाए और रिश्तेदार भी। जो दीन हमसाए का हक मांग रहा है, तो जो घर में दूसरे कमरे में रहते हैं वो उनका कोई हक नहीं होगा। ये तो यहां से पूछे, फतवे की बात नहीं है, ये तकवे की बात है। यानी ये भी एक अजीब प्रोपेगंडा हो गया कि इस्लाम में ससुराल के हकूक नहीं है। मुझे ये बताइए कि हमारा दीन इतना इंसान दोस्त है, अगर आपके हमसाए में कोई भूखा रह जाता है तो आप उसके लिए जवाब दें, तो आपके घर में बुजुर्ग कोई भूखा रह जाता है तो आप उसके लिए जवाब दें, नहीं है। हर चीज होती है ना, वो कहकर नहीं बताई जाती। फर्ज नहीं किया अगर अल्लाह ने, मिसाल है बहू पे फर्ज नहीं है तो बहू के मियाँ पे तो फर्ज है ना। फिर बीवियां अपने शौहरों को इजाजत दें कि फिर वो माओं की कंगियां भी करें, माओं को खाने भी खिलाएं पकाएं, जब मर्द ने उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा ली हुई हैं, तो अगर आप अपने शौहर की माँ की खिदमत करते हैं या बुजुर्गों की खिदमत करते हैं तो क्या ये कोई बुरी बात है? दुनिया का कोई दीन इसको बुरा नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक एस्केपिज्म है, फरार के रास्ते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो अपने माँ बाप के साथ मामला है वही ससुराल के साथ है। बस आप कहते हैं कि हम यहां आते हैं, अब हमारे घर में हमारी सास है, आपके घर में आपकी सास है या आपकी माँ है, सेम बात है, आपकी बूढ़ी माँ या आपकी बूढ़ी सास। क्योंकि माँ अगर आपकी फितरी माँ है, जो फितरी जिम्मेदारी है आपकी अपनी माँ की, तो सास की एक इनडायरेक्ट जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अपनी माँ को मैनेज कर सकते हैं उस तरह अपनी सास को कर सकते हैं। अगर आपकी अम्मी कहे कोई जरूरत नहीं है और आप घर से निकली हैं और उनकी खातिर चीजें कार करा के आए हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। मैंने देखा है लोग बूढ़ों को छोड़ के जॉब्स पे चले जाते हैं, लेकिन जहां जरा सी दीन की बात आती है तो वहां दीन को बदनाम करते हैं। तो हमारा दीन हर रिश्ते को उसका हक देता है, फर्ज नहीं। अरब कल्चर में चूंकि घर ही ऐसे होते थे कि शादी के बाद लड़का रहता ही कहीं और है, शादी के बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं। असल में जो हमारे ये सारे क्वेश्चन कल्चर के हैं ना, वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और इस्लामिक कल्चर को ना समझने के नतीजे या उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं तो इस पे इतनी ही बात कह सकती हूँ कि इस्तफ्ते कल्बक, आप अपने आप से पूछें, कल जब मैं बूढ़ी होके मैं सास के दर्जे में बढ़ूंगी, मैं बिस्तर पे हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, और मेरी बहू के दिखाओ किधर लिखा है कुरान में, हदीस दिखाओ सास की खिदमत की, तो अगर मैं ये अपने लिए चाहती हूँ तो फिर मुझे दूसरे के साथ भी कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उसके ऊपर जहन में ना रखें, क्योंकि ये लाइलमी की बातें होती है। और देखिए आखिरी आयत में भी जवाब है ना इसमें, कि इन अल्लाह यज़लिमु मिसक़ाला ज़र्रत, अल्लाह जरा बराबर हक तलफी नहीं करेगा। एक औरत ने अगर अपने बुजुर्गों की खिदमत की होगी, शौहर उसको अच्छा कहे ना कहे, माँ बाप कुछ कहे ना कहे, अल्लाह देगा। और यकीन करें कि सिर्फ ये जज्बे आपसे दूसरों की खिदमत करा सकते हैं कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। बाज़ औरतें ना वो अपने शौहरों के सामने सासों को खूब पूछेंगी, आगे पीछे फिरेंगी, कोई आ गया तो घर में अम्मी जी हो रहा है, तो बाद में अम्मी जी का पूछना भी नहीं है। नहीं, इन अल्लाह ला यस्लिमु मिसकाला ज़र्रतिन, जिसका वाबुदुल्ला पे ईमान होगा ना, वो दूसरों की बातों से बेनियाज होकर खिदमत करेगा। हमारे कल्चर में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुएं खिदमत बहुत करती हैं, खास तौर पर हमारे पंजाबी कल्चर में तो जो बहू खिदमत ना करे उसको तो सास जी टिकने ही नहीं देती, वो किसी ना किसी तरह फारग हो ही जाती हैं इल्ला माशाल्लाह। लेकिन याद रखिए कि उस खिदमत में अगर आप अपनी तारीफों के लिए कर रहे हैं, मेरा नाम और दूसरी बहू से मैंने आगे जाना है या मैंने खानदान में मशहूर होना है या अपने शोहर के लिए करना है, तो वो नीयत का फर्क हो जाएगा। सिर्फ एक सोच के साथ बड़ों की और बुजुर्गों की खिदमत बात मानना करें कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रही, छुपा के रख दूं इस नेकी को कि कल जहां भी ये नेकी आएगी मैं वहां जाहिर कर दूंगी। ठीक है, आयतें बहुत सारी हैं कुरान की जो इन मौजूआत को प्रमोट करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने वक्त पे पढ़ेंगे। बिल्कुल, हक तल्फी नहीं करनी। देखिए क्यामत के दिन डरें कि कोई बंदा आ गया और वो आपका हक तल्फी ले, और यकीन करें जिनको हम दुनिया में पसंद नहीं करते उन्होंने कल हमारी नेकियां ले जानी है, क्योंकि कल हम वहां पकड़े जाएंगे। सीधे रहो, बीवी है ना, सीधी सीधी बीवी रहें, शौहर है सीधे रहें, बच्चे हैं आप अपने माँ बाप के तो माँ बाप के हक में सीधे रहें, ना तो सर पे चढ़ाएं के पाऊं की जूती बन गई बीवी और गलत भी सुन लेगी और गालियां भी सुन लेंगी और सास ने जो कह दिया सुनी, ये भी नहीं करना। आप पढ़े लिखे दौर में बैठे हुए, आपका कुरान आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट करता है कहां मेरे हक है और कहां को मेरे हक से आगे जा रहा है। ये भी एक इशू है, अगर एक तरफ ये बात है ना कि बहू में खिदमत नहीं करना चाहती तो दूसरी तरफ सासों ने भी अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, वो भी चौधरी साहब बनी बैठी है, वो भी थानेदार के दर्जे पे पहुंची है कि जाना किधर इसने, ये भी गलत है। अगर वो जुल्म है तो ये भी जुल्म है, दोनों में सीधे बैलेंस रहे। और अब पढ़ा लिखा दौर है, लेकिन अब ये बच्चियों को सोच देना कि सास ससुर नाम की कोई चीज ही डिक्शनरी में ना हो ससुराल के नाम पे, तो ये फिर वही कल्चर है ना कि फिर इनको ओल्ड होम्स में डाल दो और हम इधर हम अपनी मजे कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ मुझे लगता है कि खुदा खौफी के साथ होगा।